समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसी सुविधा के साथ एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ आइए शुरू करें समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं के स्वागत के लिए आज तैयार हैं उन्हीं के अपने रवि कपूर और नीना अर्कल। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग रवि। एंड यू राइटली सेड इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 19th ऑफ डिसम्बर। सो लेट अस बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। रवि
जी, बिल्कुल। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को सरकार आज 31 सांसदों वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेगी। प्रस्तावित समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इन सांसदों में भाजपा नेता पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और परशोत्तम भाईरूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और अन्य सांसद शामिल हैं।
Union Home Minister Amit Shah hit out at the Congress accusing the party of presenting facts regarding his remarks on Dr. Ambedkar in a distorted way in the Rajya Sabha. Briefing media at party headquarters in New Delhi last evening, Mr. Shah condemned this, alleging the Congress of being anti-BR Ambedkar and against reservation and constitution. Earlier, Prime Minister Narendra Modi hit back at the Congress over its allegation against the remark, saying, Amit Shah has exposed the Congress dark history of insulting the architect of the Indian Constitution.
गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करना है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया विभाग के निदेशक तपन डेका, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे।
India marked a historic achievement in wildlife conservation by conducting first ever Ganges River dolphin tagging in Assam yesterday. In a statement, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change said, this is the first tagging for the species, which is a significant milestone in the advancement of Project Dolphin. The ministry said that the tagging exercise will help in understanding their seasonal and migratory patterns, range, distribution and habitat utilization, particularly in fragmented or disturbed river systems.
मुंबई में कल एक नौका दुर्घटना में 3 रक्षा कर्मियों सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। नौसेना ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब इंजन परीक्षण के दौरान एक नौका नियंत्रण खोकर यात्री नौका से टकरा गई। नौसेना ने तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। इसमें नौसेना के 4 हेलीकॉप्टरों, 11 नौकाओं, तटरक्षक बल की 1 और समुद्री पुलिस की 3 नौकाओं की सेवा ली गई। 103 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौका दुर्घटना में मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
28 Indian fishermen from Tamil Nadu's Tirunelveli district have returned home following successful diplomatic efforts that led to their early release from detention to Bahrain. The fishermen, who were arrested in September 2024, were allegedly entering Bahraini territorial waters illegally, had their 6-month sentence reduced to 3 months following a swift legal appeal. The Indian Embassy in Bahrain played a crucial role by immediately appointing legal representation for the fishermen.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने हथियारों की तस्करी के मामले में 4 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बिहार में 12, नागालैंड में 3 तथा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 1-1 स्थान पर की गई। छापे के दौरान NIA ने 315 बोर की राइफल, कई कारतूस, मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव जैसे डिजिटल उपकरण सहित कई प्रतिबंधित हथियार बरामद किए। आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा 1 कार और 13,94,000 से अधिक की नकदी भी जब्त की गई है। NIA ने कहा है कि जिन संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली गई वे एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए 4 अभियुक्तों से संबंधित हैं।
रवि, लेट्स मूव ऑन टू स्पोर्ट्स न्यूज नाउ।
जी बिल्कुल।
द थर्ड एंड फाइनल मैच ऑफ T20 इंटरनेशनल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज विमेन्स टीम्स विल टेक प्लेस एट DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी इन नवी मुंबई टुडे। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
The third T20 International between India and West Indies women will begin at 7 PM Indian time this evening. The series is tied at 1-1 as Harmanpreet led India won the series opener by 49 runs while West Indies won the second match by 9 wickets. Some news from the Ranger shooting. Indian Navy's Kiran Ankush Jadhav beat Paris Olympic bronze medalist Swapnil Kushale and the Olympian Aishwarya Pratap Singh Tomar to clinch the men's 50-meter rifle 3-positions title at the 67th National Shooting Championship in Bhopal yesterday. Moving on to squash, India's former national champion Janet Withy recorded first round 3-0 win over her Malaysian opponent Vinika Shene Kulasekaran in the 79th Western India Slam Squash Tournament in Mumbai yesterday. As per the sports calendar, Asian Youth and Junior Weightlifting Championships 2024 will begin today in Doha, Qatar. Moreover, the World Tennis League Season 3 will also kick off in Abu Dhabi today. For Akashwani News, Akhila.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं नीना अर्कल।
यस रवि, स्टार्टिंग विद चेन्नई मेट्रो। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्टेड 3 सेंट्रल GST ऑफिशियल्स ऑन चार्जेस ऑफ डिमांडिंग 5 लाख रुपीज एज ब्राइब फ्रॉम अ मदुरई बेस्ड ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन। Ravi, we have another news from the city.
Ji.
The Department of Atomic Energy Kalpakkam Centre conducted a site emergency exercise at its facilities as part of its emergency exercise at its facilities preparedness and response plan. In Bengaluru, to prevent reckless digging and road damage across Bengaluru and other parts of Karnataka, a joint house panel of the state legislature has proposed the introduction of a new law mandating the installation of all utility ducts along the sides of the roads. The proposed legislation aims to streamline the maintenance of essential services such as water, electricity, optical fiber, cables and gas transmission lines. Moving on to Hyderabad, Telangana state government has introduced the new Bhu Bharati 2024 bill in the state assembly. The bill proposed to reform the existing revenue system of Dharani for land records and land rights. State Revenue Minister P. Srinivas Reddy introduced the Bhu Bharati 2024 bill in the state assembly last evening. Highlighting the state's commitment to protect land rights, the minister described the bill as a transformative step in resolving decades-old land issues and safeguarding the rights of the common people. He emphasized that the Bhubharti 2024 bill is not just a legislative reform, but a promise to the people. And now, news from Delhi, Mumbai, Kolkata. Over to you, Ravi.
Thank you so much, Hanina. शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल द्वारका में 158 एकड़ में फैले द्वारका गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गोल्फ कोर्स के उद्घाटन से दिल्ली की हरियाली में वृद्धि के साथ साथ प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा. श्री सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को बधाई देते हुए कहा कि द्वारका गोल्फ कोर्स में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम और रेस्टोरेंट जैसी शानदार मनोरंजन सुविधाओं के साथ साथ भारत के उभरते गोल्फ खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद मिलेगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बरपुर में एक नवनिर्मित पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया. इस पॉलीक्लिनिक के अंतर्गत एलोपैथिक, यूनानी तथा आयुर्वेदिक उपचार की निशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी. श्री राय ने कहा कि ये पॉलीक्लिनिक दिल्ली सरकार की त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पॉलीक्लिनिक खोलकर नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. ये पॉलीक्लिनिक गुरु तेग बहादुर अस्पताल के अंतर्गत सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित किया जाएगा. साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि अकादमी ने इन पुरस्कारों के लिए कुल 21 भाषाओं की रचनाओं को चयनित किया है. बांग्ला, डोगरी और उर्दू भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी. साहित्य अकादमी ने जिन रचनाओं को पुरस्कार के लिए चयनित किया है उनमें 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 निबंध, 3 साहित्य का आलोचना, 1 नाटक और 1 शोध पुस्तक शामिल है. दिल्ली मेट्रो के जहांगीरपुरी से समयपुर बादली मार्ग पर मेट्रो की सेवाएं अगले 10 दिन तक प्रभावित रहेंगी. DMRC के अनुसार कल से लेकर 28-29 दिसंबर तक जहांगीरपुरी और समयपुर बादली स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं रात 10:45 के बाद सुबह 7:02 तक बंद रहेंगी. इस दौरान समयपुर बादली रोहिणी सेक्टर 18, 19 और हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन बंद रहेंगे. बढ़ते हैं महाराष्ट्र मुंबई की ओर. बॉम्बे हाईकोर्ट ने खासतौर पर हाईकोर्ट और फोर्ट इलाके के आसपास अवैध होर्डिंग्स के संबंध में अपने आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताई है. मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा अपने अधिकार के प्रति स्पष्ट अनादर के बारे में चिंता व्यक्त की. न्यायालय ने पहले की चेतावनियों के बावजूद निष्क्रियता के लिए बृहन मुंबई नगर निगम को भी फटकार लगाई. न्यायालय ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि होर्डिंग्स लगाए जाने के बाद उन्हें हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया. अब चलते हैं कोलकाता की ओर. पश्चिम बंगाल सरकार ने 6वें वित्त आयोग का गठन किया है. 5 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉ HK द्विवेदी करेंगे. आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा. आयोग राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा. भारतीय संविधान के भाग 9 और 9(1) के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है. आयोग कार्यभार संभालने के 6 महीने के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. इसका कार्यकाल अप्रैल 2025 के पहले दिन से शुरू होगा. तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार. आकाशवाणी FM बोर्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और नीना के साथ. और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की. तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम. तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है. वैसे नीना, जब मैं आ जा रहा था तो आज कोहरा कल की बनिस्पत कम था. हालांकि मैं कल भी आया था तो कल तो बहुत ही ज्यादा कोहरा था.
Yes, I agree. It was clearer today.
जी, तो दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में सुबह कोहरा धुंध रहेगी तथा बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में भी सुबह कोहरा तथा बाद में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
Thanks, Ravi. Now, news, weather news from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Bengaluru is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 18 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की, लेकिन नीना उससे पहले अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज गोवा मुक्ति दिवस है, जो प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आजादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया। गोवा मुक्ति के लिए हुए युद्ध में जहां 30 पुर्तगाली मारे गए, वहीं 22 भारतीय भी वीरगति को प्राप्त हुए। घायल पुर्तगालियों की संख्या 57 थी, जबकि घायल भारतीयों की संख्या 54 थी। इसके साथ ही भारत ने 4,668 पुर्तगालियों को बंदी भी बनाया। यही नहीं, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार गोवा उस समय भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना था। और जैसे कि हमने बताया कि आज गोवा और दमन और द्वीप का जो है वो मुक्ति दिवस भी है। और अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को, तो 1927 में आज के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। 1941 में आज के दिन जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सेना की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली और जर्मन सेना का कमांडर इन चीफ बना।
In 1945, Gandhi ji laid foundation stone of C.F. Andrews Memorial Hospital at Shanti Niketan.
1961 में आज के दिन, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगाल से मुक्त कराया। 1984 में आज के दिन चीन एवं ब्रिटेन के मध्य 1997 तक हांगकांग चीन के वापस करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
In 1994, critical stores of Indian Air Force were deinducted by AN-124 contracted by United Nations.
1997 में आज के दिन इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक टाइटैनिक रिलीज हुई। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट मुख्य भूमिका में थे। और 2012 में पार्क ग्वेन हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, हालांकि 2017 में उन्हें भ्रष्टाचार के चलते पद से हटा दिया गया। अगस्त 2018 में उन्हें 25 साल की सजा भी सुनाई गई थी। और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे उमा शंकर जोशी का, जिनका जन्म हुआ 21 जुलाई 1911 और निधन 19 दिसंबर 1988 को। इनका उपनाम वासुकी है। उमा शंकर जोशी प्रतिभावान कवि और साहित्यकार थे। 1931 में प्रकाशित काव्य संकलन विश्व शांति से उनकी ख्याति एक समर्थ कवि के रूप में हो गई थी। और निना काव्य के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य के अन्य अंगों, यथा कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि को भी पोषित किया। आधुनिक और गांधी युग के साहित्यकारों में उनका शीर्ष स्थान है। जोशी जी अध्यापक और संपादक रहे। वे गुजरात विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे, फिर वहां के वे वाइस चांसलर भी बने। उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामजद किया गया था, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। 1979 में वे शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों ने डीलिट की मानद उपाधियां दी। उमाशंकर जोशी की प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो उनमें शामिल हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, गुले पोलांड, प्राचीना, आतिथ्य और वसंत वर्ष, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सापना भरा आदि।
Today is death anniversary of Sally Ann Howes. She was an English actress and singer. Her career on screen stage and television spanned 6 decades. While still in her teens, she made her first musical comedy stage appearance in Fancy Free. In late 1950, she starred on a BBC TV version of Cinderella. In 1953, she starred in the West End in the musical Paint Your Wagon with her father, Bobby Hose, which ran for 18 months. It was followed by Summer Song, also in the West End. She is best known for the role of Truly Scrumptious in the 1968 children's movie Chitty Chitty Bang Bang. Here comes a song just for you.
Bang bang, chitty chitty bang bang, all fine for friend and friend. Bang bang, chitty chitty bang bang, all fine for friend and friend.
You're sleek as a flower of bread, your feet are a feather bed, turn everybody's head to head.
We'll glide on our motor trip with pride in our ownership,
the envy of all we survey.
और आज ही पुण्यतिथि है ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की, जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक थे। नीना, ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में और शहादत 19 दिसंबर 1927 नैनी जेल इलाहाबाद में, जबकि अशफाक उल्ला खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश और शहादत 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद में, और जबकि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 शाहजहांपुर और शहादत 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर में हुई थी। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट काकोरी कांड के अंतर्गत सरकारी खजाना लूटा गया था। हालांकि ठाकुर रोशन सिंह ने काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनके आकर्षक और बहुत ही रौबिले व्यक्तित्व को देखकर डकैती के सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहड़ी के साथ उन्हें भी फांसी की सजा दे दी गई। वहीं देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले अशफाक उल्ला खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। काकोरी कांड के सिलसिले में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अशफाक उल्ला खां ऐसे पहले मुस्लिम थे नीना जिन्हें षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा हुई थी। उनका हृदय बहुत ही विशाल और विचार बहुत उदार थे। हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित संकीर्णता भरे भाव उनके हृदय में कभी भी नहीं आए। सबके साथ समव्यवहार करना उनका सहज स्वभाव था। कठोर परिश्रम, लगन, दृढ़ता, प्रसन्नता, ये उनके स्वभाव के विशेष गुण थे। और उधर राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती झोला, ओ मेरा रंग दे बसंती।
Ravi, today we also remember Emily Jane Bronte. She was an English novelist and poet who is best known for her only novel, Wuthering Heights, now considered a classic of English literature. She also published a book of poetry with her sisters Charlotte and Anne titled Poems by Cura, Ellis and Acton Bell. With her own poems finding regard as poetic genius, Emily was second youngest of the 4 surviving Bronte's siblings between the youngest Anne and her brother Branwell. She published under the pen name Ellis Bell.
और नीना, पुण्यतिथियों में आज अंतिम नाम है जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणित रहे अनुपम मिश्र का, जिनका जन्म 1948 महाराष्ट्र में हुआ और निधन 19 दिसंबर 2016 नई दिल्ली में। पर्यावरण के लिए वे तब से काम कर रहे थे नीना जब से देश में पर्यावरण का कोई विभाग ही नहीं खुला था। बगैर बजट के मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस बारीकी से खोज खबर ली वो कई सरकारों विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभव नहीं था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ जिसे दुनिया ने देखा और बहुत सराहा।
Now we come to the birth anniversaries of today, Aravi. The first one is Pratibha Devi Singh Patil, also known as Pratibha Patil Shekhawat, is an Indian politician and lawyer who served as the 12th president of India from 2007 to 2012. She was the first woman to become the president of India. A member of the Indian National Congress, she also served as the governor of Rajasthan from 2004 to 2007 and was a member of the Lok Sabha from 1991 to 1996.
Jee. और जन्म जयंतियों में अब बात कर लेते हैं भारत के एक वैज्ञानिक और अपने समय के बहुत ही अग्रणी रहे चिकित्सक राय बहादुर सर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी का जिनका जन्म हुआ 19 दिसंबर 1873 को। सन 1922 में उन्होंने यूरिया स्टीबेमाइन का संश्लेषण किया था और ये निर्धारित किया था कि यह कालाजार के उपचार के लिए एक बेहतरीन दवा है। उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी ने कालाजार की दवा बनाकर लाखों की जिंदगियां बचाई फिर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सका। भारत की माटी ने ऐसे कई वैज्ञानिकों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाई है। ऐसे ही भारतीय वैज्ञानिक डॉ उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी भी उन्हीं में से एक थे। वे नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी हुए लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे विश्व युद्ध के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया।
Christopher Hamill, known professionally as Rimmel, is an English pop singer who was born on 19th December 1958 in Pemberton, Wigan, Lancashire, in northwest England. With aspirations to be an actor, Chris Hamill toured with the company in a production of Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Beginning in 1982, he was the lead singer of the pop group Kajagoogoo before embarking on a solo career. He garnered the 1984 hit The Never Ending Story, the theme song for the film for the same is here.
और नीना बात भारतीय सिनेमा जगत में बहुत ही प्रसिद्ध उस चरित्र अभिनेता के बारे में जिन्हें सिने प्रेमी ओम प्रकाश के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 19 दिसंबर 1919 जम्मू में हुआ था और निधन वैसे हुआ था 21 फरवरी 1998 मुंबई में।
यस, आई थिंक रवि ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज डायलॉग्स इन हिंदी मूवीज व्हेन वी वर किड्स।
जी जी, और हिंदी फिल्म जगत में ओम प्रकाश का प्रवेश नीना फिल्मी अंदाज में हुआ था। कैसे मैं आपको बताता हूं। वे एक अपने मित्र के यहां शादी में गए हुए थे जहां पर दल सुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर उन्हें लाहौर बुलवाया, मतलब तब के लाहौर। तो दल सुख पंचोली ने फिल्म दासी 1950 में जो आई थी फिल्म दासी के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपए की सैलरी पर अनुबंधित कर लिया और ये ओम प्रकाश की पहली बोलती फिल्म थी। और इसके बाद एक ओम प्रकाश ने लगभग 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी प्रमुख फिल्मों में पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल, प्यार किए जा जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में रहीं। तो फिलहाल ओम प्रकाश पर पिक्चराइज एक डायलॉग और फिल्म मिस मैरी का गीत सुन लेते हैं।
अरे इधर
ये आके आके क्या होता है? दो बार आके आके का क्या मतलब?
साहब जब आपने खड़े खड़े का दो बार प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने उसी छंद में आके आके बोलकर कविता का रस ले लिया।
तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आप छंद में बात किया करेंगे हमसे?
यदि आप अनुमति दे तो साहब।
हरगिज नहीं। ए प्यारे मुंड, तुम पागल हो? पागल
नहीं साहब, अब तो मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ।
अब तो नहीं का क्या मतलब? पहले पागल थे क्या?
लोग ऐसे मजाक में कहते थे लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि मैं पागल हूँ।
पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी, बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना, दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी, बाबू आना दो आना।
चलते चलते आज का विचार कि माँ बाप की नसीहत अक्सर बुरी लगती है लेकिन उनकी वसीयत अक्सर अच्छी लगती है। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और नीना अर्कल को।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.